लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, किसी के बात व्यवहार आचरण और उसके होने करने से हमें यह पता चलता है कि वह किस तरह के व्यक्तित्व का व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति अपने वचनों और कर्मों के माध्यम अपने आचार विचार गुणों और अवगुणों की झलक स्वतः ही दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। शायद इसी कारण हम इंग्लिश में कही जाने वाली अभिव्यक्ति फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन को कई बार अपने जीवन में कई हद तक सही पाते हैं। यीशु ख्रिस्त इसे अपने शिक्षा में चेलों से कहते हैं, कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना ही कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। निश्चित ही अच्छे पेड़ों की पहचान उसके अच्छे और मीठे फलों से होती है और अपने मानवीय स्वभाव के अनुरूप हम उन्हीं पेड़ों के निकट पहले जाने की चाह रखते हैं जहां से हमारे लिए अच्छे और स्वादिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, वर्ष के सातवें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम मानवीय व्यवहार की विशेषता को प्रमुख विषय वस्तु के रूप में अभिव्यक्त होता पाते हैं। आइए हम सुसमाचार पाठ में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन की थाह लें। हम अपने जीवन पर आत्म मंथन करें और स्वयं से पूछें, क्या हम अपने जीवन में अपने व्यवहार और कर्मों के माध्यम दूसरों के लिए अच्छा फल उत्पन्न करते हैं? क्या हमारे कर्म और व्यवहार से उत्पन्न होने वाले फलों के माध्यम लोग हमारे निकट और हमारे पास आने की चाह रखते हैं? क्या हमने स्वयं अपने व्यवहार रूपी फल को देखने का प्रयास किया है कि वे अपने में मीठे खट्टे या कीड़े लगे हुए हैं?
मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उद्धार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उद्धार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा।
श्रोताओ, प्रभु वचनों का श्रवण हमें अपने जीवन पर आत्म मंथन करने को प्रेरित करे, जिससे हम अपने जीवन की उन बातों को अपने से दूर कर सकें जिनके द्वारा दूसरों को खट्टेपन का अनुभव होता है। हम अपने में मीठा फल देने वाले पेड़ बन सकें, क्योंकि ईश्वर के द्वारा जीवन दिए जाने का उद्देश्य हमारे लिए यही है। श्रोताओ, सामुएल के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए राजा दाऊद के व्यक्तित्व की चर्चा करता है, जहां हम उसे अपने शत्रु राजा सौल को एक शिकार स्वरूप अपने सामने पाते हैं। दाऊद को अपने सहयोगियों से यह भी सलाह मिलती है कि उसके कहने पर वे उसे मार डालेंगे, परंतु दाऊद को यह उचित नहीं लगता है। वह अपने साथियों को ईश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाने को कहते हैं, यद्यपि कि युद्ध के नियम अनुसार यह जायज था। श्रोताओं, यह हमारे लिए दाऊद के चरित्र की झलक देता है कि वे जीवन और जीवन के दाता ईश्वर दोनों का सम्मान करते हैं। यह हमारे लिए राजा दाऊद में ईश्वर के भय को प्रकट करता है, अर्थात मानव के रूप वह किसी को जीवन नहीं दे सकता है, अतः उसमें वह अधिकार नहीं कि वह किसी का जीवन ले। जीवन देने का अधिकार सिर्फ ईश्वर का है, अतः वे ही इसे हमसे वापस ले सकते हैं। और इस दिव्य नैतिक मूल्य को राजा दाऊद अपने में भली भांति जानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। श्रोताओं, यह हमें आज के दूसरे पाठ से संयुक्त कराते हुए हमें इसे समझने को मदद करता है, जो कुरुन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, जहां प्रथम आदम को हम एक जीवित प्राणी के रूप में पाते हैं, जबकि दूसरा आदम जीवनदायी आत्मा है। मानव प्राणी के रूप में हमारा अपने में कोई अस्तित्व नहीं है, हम स्वयं जीवित नहीं रह सकते हैं। वही एक शाश्वत जीवनदाता ईश्वर है, जो अपनी कृपा में हमें जीवन देते हैं, जिसमें हम सभी आश्रित रहते हैं। हमारे जीवन का आधार उस ईश्वर में बना रहता है। हम मिट्टी के हैं, लेकिन हमारे बनाने वाले स्वर्ग के हैं। उन्होंने हमें इसलिए बनाया है कि हम उनकी इच्छा और योजना में जीवन यापन करते हुए स्वर्ग लोक में अनंत आनंद के सहभागी उनके संग हो सकें। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हम इस तथ्य की गहराई को व्यक्त पाते हैं। हम जिस तरह का व्यवहार लोगों से आशा करते हैं, हमें दूसरों के संग उसी तरह का व्यवहार करने की मांग की जाती है। हम सभी दूसरों से प्रेम, आदर, सम्मान और स्वीकार किए जाने की चाह रखते हैं, लेकिन क्या हम उनके संग वैसा ही व्यवहार करते हैं? शायद नहीं, और यही हमारे मानवीय जीवन की सबसे बड़ी खामी है। हम दूसरों से आशा तो बहुत करते हैं, लेकिन हम अपनी ओर से दूसरों को वे चीजें नहीं के बराबर प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार हमें अपने व्यवहार और आचरण की परख करने का आह्वान देता है कि हम दूसरों के संग किस तरह का बर्ताव करते हैं। आज यीशु हमें अपने व्यवहार में सिर्फ अपनों के प्रति नहीं बल्कि सबों के प्रति करुणा का भाव प्रकट करने को कहते हैं, जो हमारे कार्यों के माध्यम ठोस रूप में व्यक्त होता है। हम जिस मात्रा में दूसरों के लिए अपने को देते हैं, उतनी ही मात्रा में हमारे लिए ईश्वरीय कृपा और करुणा का द्वार खुला रहता है। आइए हम पवित्र आत्मा से अपने हृदय को खोलने और उदारता की कृपा मांगें, जिससे हम अपने को ईश्वरीय बुलावे के अनुरूप सबों के लिए दे सकें।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने शनिवार को पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य की नई जानकारी देते हुए कहा कि पोप ने एक आरामदायक रात बिताई, इसके बावजूद कि पिछली शाम को रोम के जेमेली अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने बतलाया था कि उन पर उपचार का असर हो रहा है, लेकिन वे खतरे से बाहर नहीं हैं। रोम के जेमेली अस्पताल में पोप फ्रांसिस का इलाज कर रही मेडिकल टीम के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को कहा कि वे अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं और कम से कम एक और सप्ताह वे अस्पताल में रहेंगे। रोम के जेमेली अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोप की देखभाल करने वाली टीम के प्रमुख डॉक्टर सर्जो अल्फियरी और वैटिकन की स्वास्थ्य सेवा के उप निदेशक डॉक्टर लुइजी कार्बोने ने पत्रकारों से भरे कमरे में लगभग 40 मिनट तक बात की। डॉक्टर अल्फियरी ने इस बात पर जोर दिया कि पोप को वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया है, हालांकि उन्हें अभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इसके परिणाम स्वरूप उनकी शारीरिक गतिविधियां सीमित हैं। डॉक्टर ने कहा, फिर भी पोप कुर्सी पर सीधे बैठते हैं, काम कर रहे हैं और हमेशा की तरह मजाक कर लेते हैं। एक पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर कि उनका सबसे बड़ा डर क्या है, डॉक्टर ने कहा कि पोप के श्वास नली में कीटाणु उनके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे सेप्टिक हो सकता है। पोप फ्रांसिस जब रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। भारत के धर्माध्यक्षों ने पोप फ्रांसिस के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत की कलीसिया से प्रार्थना करने का आह्वान किया है। पोप फ्रांसिस को ब्रोंकाइटिस की शिकायत के बाद शुक्रवार 14 फरवरी को रोम के अगोस्तीनो जेमेली अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में उन्हें डबल निमोनिया होने का पता चला था और उनके औषधीय चिकित्सा में बदलाव किया गया। भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष एवं गोवा तथा दमन के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव ने 21 फरवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पोप फ्रांसिस के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करने का आह्वान जारी किया है। उन्होंने देश के महाधर्माध्यक्षों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघों, प्रचारकों और लैटिन कार्तिक कलीसिया के सभी विश्वासों को संबोधित एक पत्र में कहा, गहरी चिंता एवं अत्यावश्यकता की भावना के साथ मैं पूरे भारत के सभी विश्वासियों को हमारे प्रिय संत पापा फ्रांसिस के शीघ्र एवं पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना में शामिल होने हेतु आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा, ख्रिस्त के प्रतिनिधि कार्तिक कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी और संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में पोप फ्रांसिस पर विश्वव्यापी कार्तिक कलीसिया की अगुवाई अटूट समर्पण एवं प्रेम के साथ करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कार्डिनल फेराओ ने कहा कि पोप फ्रांसिस के शीघ्र एवं पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष प्रार्थनाएं पौत्र मिस्सा, पौत्र संस्कार की आराधना एवं पौत्र रोजरी माला विनती अर्पित की जाए। वे अपील करते हुए कहते हैं कि विशेषकर मैं सभी पल्लियों से आग्रह करता हूं कि रविवार की यूखरिस्त समारोह के दौरान हमारे प्रिय पोप के लिए एक विशेष प्रार्थना शामिल की जाए।
इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ट्स ने वेस्ट बैंक में शरणार्थी शिविरों में सैन्य छापे बढ़ाने का आदेश दिया है। यह तेल अवीव में बस विस्फोटों की एक श्रृंखला के बाद हुआ जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। किसी भी समूह ने विस्फोटों की जिम्मेदारी नहीं ली है। इजराइल रक्षा मंत्री ने कहा कि तीव्र छापे टुलकार्म शरणार्थी शिविर और वेस्ट बैंक में अन्य पर भी केंद्रित होंगे। इसराइल के कान टीवी की रिपोर्ट है कि शिनबेट घरेलू सुरक्षा एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि अपराधी टुलकार्म से आए थे या नहीं। विस्फोट उपकरणों में से एक पर मिले स्टिकर से पता चलता है कि यह हमला हाल ही में व्यापक विनाश के कारण बने इजरायली छापों का बदला है। हमले में तीन खाली बसों में कुछ ही मिनटों में विस्फोट हो गया और दो अन्य बसों में विस्फोट उपकरण पाए गए, जिसके कारण सुरक्षा जांच के लिए सार्वजनिक परिवहन को अस्थायी रूप से पूरे देश में निलंबित कर दिया गया है। यूक्रेन में 3 साल के युद्ध ने देश को एक दुखद मानवीय स्थिति में छोड़ दिया है। हर दिन लाखों यूक्रेनी बच्चे, महिलाएं और पुरुष जीवित रहने में भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। 12.7 मिलियन से अधिक लोगों को तत्काल सहायता की आवश्यकता है, जबकि 6.8 मिलियन यूक्रेनी शरणार्थी सुरक्षित आश्रय की तलाश में पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। यूक्रेन की सीमाओं के भीतर 3.6 मिलियन लोग विस्थापित हो गए हैं। यह मानवीय आपदा को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कठोर सर्दी है, जिसका तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जबकि राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति के 60% से अधिक के नुकसान ने पूरे समुदायों को हीटिंग, बिजली और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच के बिना छोड़ दिया है। रूस की ओर से लगातार गोलाबारी और बमबारी ने मानवीय संगठनों के लिए भोजन, कपड़े, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित लोगों तक पहुंचना बेहद मुश्किल और खतरनाक बना दिया है। खतरों और रसद संबंधी कठिनाइयों के बावजूद कलीसिया की सहायता संगठनों ने परम धर्मपीठ और मानवीय संगठनों के साथ मिलकर यूक्रेन में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद प्रदान करना और बेहतर भविष्य की उम्मीद देना जारी रखा है। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद से कारितास की यूक्रेनी शाखाएं और इसके साथी सदस्य बच्चों, विकलांगों, बुजुर्गों और महिलाओं सहित सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रहे हैं। उधर जनवरी के अंत में जब से M23 विद्रोहियों ने गोमा पर कब्जा किया है, बुकावु भी धीरे धीरे कमजोर स्थिति में जी रहा है। लोग 15 दिनों तक अपने कान मोर्चे से आने वाली खबरों के लिए लगाए हुए शून्य में लटक रहे हैं, जबकि यह देखा गया क्षेत्र के विभिन्न देशों से युद्ध विराम और शांति के लिए आह्वान और धर्माध्यक्षों और प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के प्रमुखों द्वारा बातचीत का रास्ता सुझाने के प्रयासों के बावजूद विद्रोहियों का आगे बढ़ना जारी रहा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।